आप हैं SBS हिंदी के साथ।
लगभग 7 महीने हो गए हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया में COVID-19 का पहला मामला सामने आया था, लेकिन तब से अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लोगों के जहन में इस वायरस के प्रसार, इसकी ट्रेसिंग और इसके उपचार के बारे में कई सवाल हैं। चलिए आज इनमें से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला जनवरी में सामने आया था। इसके बाद इससे जुड़ी खबरें लगातार सुर्खियों में रही हैं। लेकिन ये वायरस फैलता कैसे है, कैसे इसके संक्रमण को पकड़ा जा सकता है और इसके उपचार के लिए अभी तक किया क्या जा रहा है, इस बारे में लोगों के मन में कई सवाल हैं। इनमें से एक सवाल कुछ ऐसा है कि क्या आप सिगरेट के धुएं से संक्रमित हो सकते हैं। फिलिप रूसो कैबरिनी मोनैश यूनिवर्सिटी के नर्सिंग रिसर्च विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि सामान्यतया ये संभव नहीं है कि कोई अगर सिगरेट पीते संक्रमित शख्स के पास से गुजरे और खुद संक्रमित हो जाए।
We need to keep in mind that this is an infection that's spread by the droplet route. So those who have close contact with people with the infection are at high risk of getting it. It's not generally thought to be distributed through the air and floating around in the air. If you were to share a cigarette with somebody, certainly you that would be one way of spreading the virus. And if you were to share a cigarette lighter.
COVID-19 वायरस के संक्रमण के प्रसार को कम करने के मकसद से विक्टोरिया में लोगों को मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने को कहा गया है। हालांकि कुछ लोग इसमें स्वास्थ्य कारणों से छूट के पात्र हो सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स की सरकार भी लोगों से कुछ जगहों पर फेस मास्क पहनने का आग्रह कर रही है, खासतौर पर ऐसी जगहों में जहां 1.5 मीटर की सामाजिक दूरी बनाना संभव नहीं है या फिर ऐसी जगहों में जहां वायरस का सामुदायिक प्रसार हो रहा है। इसके अलावा कमजोर लोगों की देखभाल करते वक्त और ज्यादा जोखिम वाली जगहों पर काम करते या यात्रा करते वक्त भी मास्क पहनने की सलाह दी गई है। लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर रूसो का कहना है कि चाहे मास्क पहना हो या नहीं, सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है।
The second most important thing we can do is hand hygiene. So we need to be really vigilant in making sure that we wash our hands frequently and thoroughly. If you're in the supermarket and you do happen to be bunched up with people or anywhere where there's lots of people, then a mask will just add that little bit extra protection. But it's important to keep in mind that the most important intervention is that physical distancing. So outside of Victoria, where there's still very low prevalence of infection, I don't see a big need for masks.
Victoria में मास्क पहनने से छूट के अपवादों में कोई भी व्यायाम या शारीरिक गतिविधि करने वाले लोग हैं जहां वो तेजी से सांस ले रहे होते हैं, जैसे कि दौड़ना, जॉगिंग करना या फिर साइकिल चलाना। हालांकि कुछ लोग चिंतित हो सकते हैं कि सड़क पर दौड़ता कोई संक्रमित शख्स अपनी तेज सांसों से उन्हें संक्रमित कर सकता है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर रूसो का कहना है कि इसका खतरा काफी कम है।
You're at highest risk if you're in an enclosed space, like a small room, and in close contact with somebody with the virus. The mask will help prevent broad dissemination of droplets, so that's one way that could prevent it, but that physical distance is the most important. If we're thinking about outdoor areas, and the risk is greatly reduced because you're outdoors and air currents are likely to take any droplets away from you.
एक बड़ी बात ये भी है कि एक बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियाई लोग घरों में ही रहकर काम कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग भी बड़ी है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग से भी जुड़ा एक सवाल लोगों के मन में है कि क्या घर पर आने वाले हर पैकेज को साफ करना जरूरी है। एसोसिएट प्रोफेसर रूसो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के एहतियात बरतना उपयोगी हो सकते हैं।
The virus, how long it lives on surfaces, it's on a bit of a spectrum. It depends on the temperature. It depends if it's in a big droplet of mucus or if it's in a drier surface area. It's going to depend on all those factors. So it could last for 5 minutes. Could last for a few hours. So there's no harm in wiping down those packages, but more importantly, you should be washing your hands after handling any of those packages.
सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता बनाए रखने के साथ ऑस्ट्रेलियाई लोगों को महीनों तक केंद्र सरकार के कोविड सेफ ऐप को डाउनलोड करने के लिए आग्रह किया गया था। इस ऐप के बारे में बताया गया था कि ये वायरस के प्रसार को रोकने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर काम करेगा। इसके जरिए ये सुनिश्चित हो सकेगा कि किसी भी संक्रमित शख्स के संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं। लेकिन क्या ये ऐप अपने काम पर खरा उतरा है? तो इसका जवाब ये है कि क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई भी संक्रमित शख्स सामने नहीं आया है जिसने कि इस ऐप को डाउनलोड किया हो। वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थिति वायरस के सामुदायिक प्रसार तक नहीं पहुंची है। तो इसका मतलब है कि यहां पर इसका ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है। विक्टोरिया के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर एलन चेंग कहते हैं कि इस ऐप ने स्वास्थ्य प्रशासन को कोई नई जानकारी नहीं दी है।
We wouldn't really expect to find a contact that through the app because you know at the moment we're either at work or at home and the contacts are known to us and so I understand that where it has been used it's generally picked up people that have already been detected by the contact traces.
लेकिन केंद्रीय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी निक कोट्सवर्थ कहते हैं कि न्यू साउथ वेल्स में ये एक काम का ऐप साबित हुआ है।
The app is clearly having an important effect. I mean, it not only did it identify some unknown contacts, 544 of them, in fact, it actually identified an entire exposure event at one particular club in New South Wales that wouldn't have otherwise been found.
अब बात आती है COVID-19 के संक्रमण के उपचार की। जो भी लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं उनको दिया जाने वाला उपचार उनके लक्षणों की गंभीरता के आधार पर अलग अलग होगा। पीटर वॉक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल के स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर और जॉन हंटर अस्पताल में सीनियर स्टाफ स्पेशलिस्ट हैं। उनका कहना है कि जहां COVID-19 के ज्यादातर मामलों में लक्षण काफी हल्के हैं और इन मामलों में घर में की जाने वाली देखभाल काफी है, लेकिन 5-15% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी।
Most of our care in fact is supportive. We provide oxygen, we help people when they're feeling very unwell, we help them with fever and symptoms, but we're not directly treating the virus. The exception to that is the use of the immunosuppressive agent, dexamethasone, for people who are severe enough to be admitted to hospital and require assistance with oxygen, they will derive a benefit in terms of length of stay and the severity of their illness by receiving treatment.
Professor Walk कहते हैं कि अस्पताल में भर्ती 5 लोगों में से एक को ही गहन चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत होगी।
For those that might mean treatment with what we call non-invasive respiratory support, the use of equipment to help. Additionally, to help with low levels of oxygen, and unfortunately, a number of people have very severe impairment, requiring what we call invasive ventilatory support with intubation and ventilation.
वो कहते हैं कि इन परिस्थितियों में जो लोग बच जाते हैं, उनके फेफड़ों में काफी नुकसान हो चुका होता है, साथ ही वो काफी कमजोरी भी महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को बाद में भी गहन देखरेख की जरूरत होती है।
With anybody admitted because of severe respiratory disease to intensive care, it's often a very prolonged hospitalization and a very prolonged time to recovery with problems that go well past 12 months.
Professor Walk कहते हैं कि COVID-19 के हल्के लक्षणों वाले लोग भी लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का सामना कर सकते हैं, जिनमें कि शरीर में दर्द और थकान जैसे प्रभाव शामिल हैं।
Social media is now fairly replete with individuals describing persistence of symptoms, some unfortunately in excess of 60 days. They call themselves long haulers, where they have the persistence of these symptoms and recurrence of these symptoms outside of the impact of direct acute infection as well. This is obviously an area that people are going to be very, very interested in, and unfortunately, we're learning as we're going here. When we're talking about people who have had symptoms in excess of 60 days, how long that will last, what proportion of individuals, who is at risk, all of these are really important questions for at the moment we just don't know.
Coronavirus से संबंधित कोई भी खबर अपनी भाषा में पाने के लिए आप sbs.com.au/coronavirus पर जा सकते हैं। SBS न्यूज से एमी हॉल की इस रिपोर्ट को आपके लिए पेश किया है SBS हिंदी से गौरव वैष्णव ने।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।